समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं। लड़ना वीरों का पेशा है, इसमें कुछ भी ना अंदेशा है। तू किस गफलत में पड़ा पड़ा, आलस में जीवन खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जी हाँ, आप नींद से जाग जाइए, क्योंकि अब कुछ करने का समय आ गया है। तो इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, वेल सेड, राइज एंड शाइन फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स हैप्पी सैटरडे टू यू ऑल। We are all set with our magazine program, Aaj Savere, about to begin from the studios of Akashvani. So, Akashita, let us go. Start with some news headlines right away.
नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के रानाघाट में 3,200 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बरजागुली कृष्णनगर खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 17.6 किलोमीटर लंबे 12-7 बरजागुली खंड के 4 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम हो जाएगी।
From West Bengal, Prime Minister Narendra Modi will travel to Assam this afternoon for a 2-day visit. During the visit, Mr. Modi will inaugurate and lay the foundation stone of development projects worth around 15,600 crore rupees in the state. On the first day today, the Prime Minister will inaugurate the state-of-the-art bamboo orchids terminal building at Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport in Guwahati. Spread over nearly 1.1 lakh square meters, the new terminal is designed to handle up to 1.3 crore passengers annually. The terminal reflects Assam's biodiversity and cultural heritage, inspired by the theme Bamboo Orchids.
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिन के दौरे पर आज तेलंगाना और मध्य प्रदेश जाएंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में लोक सेवा आयुक्तों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के विदाई समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री राधाकृष्णन कल विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर नंदीगाम स्थित कान्हा शांतिवनम में हार्टफुलनेस वैश्विक मुख्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति अटल संस्थान द्वारा आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर भी जाएंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात पर बल दिया है कि पिछले 11 वर्षों में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में काफी प्रगति हुई है। कल नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई के राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला सहित कई प्रमुख पहलों ने शहरी विकास को काफी मजबूत किया है और भारत को दुनिया के अग्रणी आधारभूत ढांचा सुविधा वाले देशों में से एक बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के सकारात्मक और वास्तविक परिणाम मिले हैं।
Fact check unit of the Press Information Bureau has called on the public to share suspected fake news related to the government. Informing this in Rajya Sabha yesterday, Union Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, said any complaints or fact check requests regarding news or information items circulating on matters pertaining to the government may be sent via WhatsApp at 8799-711-259 by email or through the PIB website.
दुबई में कल शाम खेले गए अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया और अब उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। कल दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला होगा।
In men's cricket, India defeated South Africa by 30 runs in the fifth and final T20 international to clinch the series 3-1 in Ahmedabad last night. Put into bat, India posted 231 for the loss of 5 wickets in 20 overs. Chasing a target of 232 runs, the visitors were restricted to 201 for the loss of 8 wickets in 20 overs. Hardik was named player of the match. Varun was adjudged player of the series. The fourth T20 was abandoned due to foggy conditions in Lucknow earlier this week. And Jammu and Kashmir is all set to host its first ever international Indian-style wrestling Dangal event, along with Rustam A. Jammu Kashmir title 2025 at the iconic Maulana Azad Stadium, Jammu today. The mega sporting event will witness participation of more than 100 international and national Dangal stars who will compete for the Rustam A. Jammu Kashmir title 2025. The competition will also feature open category bouts with prominent national and international wrestlers. We have a report.
The championship will bring together professional wrestlers from India, Iran and several other countries, making it one of the biggest wrestling events ever organized in the Union Territory. The event intends to revive and showcase the region's rich Dangal heritage while providing a global platform for the athletes. The newly introduced Rustam-e Jammu Kashmir title is open to the wrestlers above 85 kg, with the champion set to receive ₹50,000 along with the traditional gurj and patta. The mega sporting event organized by the Jammu and Kashmir Sports Council aims to promote unity, strength, fitness and cultural pride through the traditional sport of wrestling. The event begins at 12 noon with free entry for spectators. This is N. Gulshan Raina for Akashwani News from Jammu.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं सुभद्रा।
यस आकर्षिता, स्टार्टिंग विथ न्यूज फ्रॉम चेन्नई मेट्रो। Having Pitbull and Rottweiler breeds within city limits has been banned in Chennai from Saturday. The Greater Chennai Corporation will impose a 1 lakh penalty on owners purchasing new dogs of these breeds. It has halted issuance of fresh licenses as well as renewals citywide. The decision follows a rise in pet dog attacks in public places. In several incidents, the aggressive nature of Pitbull and Rottweiler breeds led to serious injuries to people even without provocation. As the ban takes effect on Saturday, applications for new pet licenses for Pitbull and Rottweiler breeds will not be accepted. We have another one from Chennai. ICGS Mandapam and the Central Intelligence Unit CIU headquarters Tiruchirappalli conducted a successful anti-smuggling operation during the midnight hours of 18 and 19 December. Acting on intelligence inputs, a joint team intercepted an Indian fishing boat off Pamban in the Gulf of Mannar at around 0230 hours and seized hashish oil valued at approximately 9 crore. The contraband, along with the vessel, was handed over to the CIU, Tiruchirappalli, for further legal action, reaffirming the Indian Coast Guard's role as a lead agency in maritime law enforcement. Akashita, what news do you have?
जी हाँ, और अब खबरें दिल्ली से। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से लंबित चली आ रही आबादी देह भूमि की पहचान, स्वामित्व और दस्तावेजी अस्पष्टता को समाप्त करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने आबादी देह क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि सर्वे के तहत आबादी देह क्षेत्रों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, साथ ही उनका सत्यापन और कम्प्यूटरीकरण भी किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पहल न केवल भूमि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाएगी बल्कि ग्रामीणों को स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण और वित्तीय सुरक्षा देने में भी निर्णायक साबित होगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि अब तक 31 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और 25 गांवों की मैप 2.0 की जांच कर उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है ताकि जमीन के पार्सल मैप और भू आधार नंबर जारी किए जा सकें। वहीं दिल्ली सरकार राजधानी में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए विभिन्न विद्यालयों में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाएगी। कल दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सूद ने बताया कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत ये एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्यूरिफायर के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने उत्सर्जन स्रोतों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को 24 घंटों में 11,700 से अधिक चालान जारी किए हैं। इस बीच नगर निगम एजेंसियों ने सामूहिक रूप से 12,000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा हटाया, मशीनी सड़क सफाई मशीनों से 2,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई की गई और मशीनीकृत सफाई, जल छिड़काव तथा मोबाइल एंटी स्मॉग गन के माध्यम से 9,400 किलोमीटर से अधिक सड़कों को साफ किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय कल से आगंतुकों के लिए खुल गया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि पहले दिन आगंतुकों का फूलों से स्वागत किया गया। इसके अलावा आगंतुकों ने प्रदर्शनी के जरिए दिल्ली मेट्रो की प्रेरक यात्रा का भी अनुभव किया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सार्वजनिक अवकाश के अलावा संग्रहालय मंगलवार से रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।
BESCOM celebrated National Energy Conservation Day yesterday as part of Energy Conservation Week, being observed from December 14 to 20 as mandated by the Bureau of Energy Efficiency under the Union Ministry of Power. To promote energy efficiency and sustainable practices, BESCOM organized painting competitions for students and distributed books and LED bulbs. The initiative aimed at creating awareness on minimizing energy wastage, encouraging efficient energy use and fostering sustainable habits across Karnataka. The Air Force Test Pilot School in Bengaluru yesterday concluded the first test course for unmanned aerial systems and a production test pilot's course with a ceremonial function. Conducted by the Aircraft and Systems Testing Establishment, the courses recognize meritorious student officers with trophies. The graduating officers will be inducted for test flying production aircraft and for testing indigenous unmanned aerial systems, supporting the nation's Atmanirbhar Bharat initiatives in defense aerospace. The Air Force Test Pilot School is the country's only institution training experimental and production flight test crew for fixed wing, rotary wing, and unmanned aerial systems, having conducted 47 flight test courses and 24 production test pilots courses so far, including for officers from friendly foreign countries. Akarshita, Bombay News Now.
Ji, aur aaiye ab jante hain Mumbai ki khabrein. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को समर्पित एक वैश्विक केंद्र विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। मुंबई में कल 3 दिवसीय ऋषभयान 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक ज्ञान को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना और वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में आयोजित महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजयी भारतीय टीम को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दृष्टिबाधित क्रिकेटरों के प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार लाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। टीम के पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने खिलाड़ियों की अथक मेहनत, निरंतर अभ्यास और कई कठिनाइयों को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के दृढ़ संकल्प की भी सराहना की। महाराष्ट्र में 23 स्थानीय निकायों के साथ साथ विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 143 सदस्य सीटों के लिए आज मतदान होगा। इन चुनावों के साथ साथ इस महीने की शुरुआत में हुए 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव की मतगणना कल होगी। त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 1992 के गीत 7 समुन्दर पार पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है। प्रोडक्शन हाउस ने 10 करोड़ रुपए के जुर्माना और गीत के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है, जिसमें इसकी धुन और बोल भी शामिल हैं। ये रोक 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरी में किसी भी तरह के इस्तेमाल या रिमिक्स के लिए लगाई जानी है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसिक सेविंग्स अकाउंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर 61,95,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरबीआई द्वारा किए गए एक वैधानिक निरीक्षण और पर्यवेक्षी मूल्यांकन में ये पाया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक ने एक ही ग्राहक के नाम पर कई बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
Going over to Hyderabad now, in Telangana, the State Agriculture Department is all set to roll out a mobile phone app-based purchase system for farmers to buy urea. The Agriculture Department said the app is designed to ensure seamless distribution of and sales of the fertilizer. The app is available for Android phones as fertilizer booking app and was tested in Pedapalli district earlier this week. The testing was extended to 10 more districts yesterday and likely to be rolled out across the state early next week. The authorities had faced criticism over supply of urea to farmers in the Kharif crop season earlier this year. The officials informed that the primary focus was to eliminate panic among farmers over the availability of urea. Booked bags will be reserved for a day and booking is valid for 24 hours.
और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। और सुभद्रा, दिल्ली के मौसम का हाल तो हम सभी जान रहे हैं। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है।
yes,
और आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह हल्की धुंध रहेगी और बाद में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग अगेन। मिनिमम टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 27। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई, टेम्परेचर विल बी बिटवीन मिनिमम ऑफ 12 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस। एंड आकर्षिता, लेट्स मूव अहेड। And what's today? Let's tell them now, right? You know, unity is very important in our land, in around the world, all over the place. So united we stand, divided we fall. That should be our way of living, especially during challenging times. Today, as we observe the International Human Solidarity Day, let's keep aside our differences, be it religion or anything else, caste, creed, everything else. Let us work together in fighting against various issues we face, like poverty, hunger, disease, terrorism, cold war, and many more.
जी हाँ, इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मौजूद विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच एकता का जश्न मनाना है। और सुभद्रा, वो कहते हैं ना
yes.
कि चाहे उनकी संस्कृति हो, हमारी संस्कृति
yes,
हो, गरीबी अमीरी, सब कुछ हमें एक एकता के बंधन
yes,
में जो पिरोता
course,
है वो
yes.
ये है कि हम collective, एक मनुष्य हैं।
या इट्स कॉल्ड द कलेक्टिव एक्शंस कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड।
और आइए अब जानते हैं कि आज के दिन और क्या क्या खास हुआ इतिहास में।
यस, 1830 ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड रशिया रिकग्नाइज बेल्जियम। एंड 1880 ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, न्यूयॉर्क्स ब्रॉडवे बिकेम नोन एज द ग्रेट व्हाइट वे व्हेन इट वाज लिट बाय इलेक्ट्रिसिटी।
और आज के दिन ही 1999 में चीन और पुर्तगाल के समझौते के बाद मकाऊ चीन का हिस्सा बना।
एंड 1946 फ्रैंक कैप्रा'स इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अ ड्रामा स्टारिंग जिमी स्टुअर्ट, premiered and later became a holiday classic.
और 1988 में आज के दिन ही संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी।
And 1955 Cardiff is proclaimed the capital city of Wales, United Kingdom. And 1963 this day, the Berlin Wall in Germany was opened to West Berliners for the first time. It was only for the holiday season. And 1980 this day, 2 weeks after his untimely death, John Lennon scored his first solo number one single in the United Kingdom, Just Like Starting Over.
और आज के दिन ही 1955 में भारतीय गोल्फ संघ का गठन हुआ था और 1951 में पहली बार न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से अमेरिका में बिजली बनाई गई थी।
And let's get to some personalities now. Yes, Akshita, who do you have first?
Yeah, उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज अभिनेत्री नलिनी जयवंत की पुण्यतिथि है। उन्होंने 50 और 60 के दशक में सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। फिल्म काला पानी का ये गीत नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, इस गीत पर नलिनी जयवंत द्वारा किए गए अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया भूख रहती राजा तोरे।
नलिनी जयवंत ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत वर्ष 1941 में प्रदर्शित फिल्म राधिका से की थी। फिल्म राधिका के बाद इसी वर्ष महबूब खान के निर्देशन में फिल्म बहन रिलीज हुई। इस फिल्म में नलिनी के साथ प्रमुख भूमिका में थे शेख मुख्तार, साथ में थी नन्ही सी मीना कुमारी जो बेबी मीना के नाम से इस फिल्म में एक बाल कलाकार थी। इस फिल्म में संगीतकार अनिल बिस्वास ने नलिनी जयवंत से 4 गीत गवाए थे। इन 4 गीतों में से वजाहत मिर्जा का लिखा हुआ एक गीत था, नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, जो बहुत लोकप्रिय हुआ।
हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, खाए वो कैसे खिलाए वो कैसे, खाए वो कैसे खिलाए वो कैसे, घर में नहीं बांधा, हाय सारे घर में।
रमेश सहगल की 2 फिल्मों शिकस्त और रेलवे प्लेटफॉर्म की भूमिकाओं के लिए नलिनी जयवंत को याद किया जाता है। उन्हें फिल्म काला पानी के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।
Yes, after Nalini Jayawant, we are going to talk about a Nobel Prize, the one who won for literature in 1962. Tribute to John Steinbeck, American novelist, best known for The Grapes of Wrath in 1939, which summed up the bitterness of the Great Depression decade and aroused widespread sympathy for the plight of migratory farm workers. Also, American director Robert Mulligan, whose credits most notably include the classic film To Kill a Mockingbird, passed away this day at the age of 83. And tributes to Paresh Lal Roy, an Indian amateur boxer who introduced boxing to India, was born this day in 1893. He is also called the father of Indian boxing. And Arthur Rubinstein, Polish-American virtuoso, pianist, passed away this day, 82, at the age of 95. He received international acclaim for his performances of the music written by a variety of composers. A child prodigy who staged his first stage show at the age of 8 had earned many awards and accolades that include the French Legion of Honor, the American Medal of Freedom. His lifelong commitment to music and his extensive body of work remain an inspiration to classical music lovers around the world. You're listening to Beethoven's Sonata No. 8, Opus 13, Pathetic, played by Arthur Rubinstein. And friends, 1940 this day, birth anniversary of Yamini Krishnamurti, renowned Bharatnatyam, Kuchipudi dancer, a recipient of Padma Shri in 1968, Padma Bhushan 2001, and Padma Vibhushan 2016, and also Sangeet Natak Academy 1977.
वसति वने वनमाली।
यामिनी कृष्णमूर्ति को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी अर्थात निवासी नर्तकी होने का भी सम्मान प्राप्त है। भारत की आजादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक बाबा सोहन सिंह भकना की आज पुण्यतिथि है। वे अमेरिका में गठित गदर पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे। लाला हरदयाल ने अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई थी। जिसका अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया गया था। इसी संस्था के द्वारा गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला गया और इसी के नाम पर आगे चलकर संस्था का नाम भी गदर पार्टी रखा गया। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण सोहन सिंह जी को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अंग्रेज सरकार उन्हें पूरे 16 वर्ष तक जेल में रखना चाहती थी, किंतु उनके स्वास्थ्य को गिरता देख सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा।
Old-time singer-actor Robert Cassato, popularly called Bobby Darin, passed away at age 37 after a complicated heart surgery. Remembered for songs like Splish Splash, Mac the Knife, Beyond the Sea, Dream Lover, he started his career as a songwriter for Connie Francis.
More than the greatest love the world has known, this is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so, my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long, long time. But
after Bobby Darin, friends, roots rock, blues rock, southern country and much more. That's the style of a very popular rock band, the Black Crowes, founded by two brothers, Chris Robinson and Richard Robinson. Chris Robinson, the lead singer, guitarist, songwriter, turned 60 today, whose powerful blues-infused tenor voice is often compared to classic rock and soul vocalist. He has a big-time hit of his.
आज प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार, विद्वान और आलोचक सुनील कोठारी की जयंती है। भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा लेने से पहले सुनील कोठारी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने भरतनाट्यम, ओडिसी, छऊ, कथक समेत अन्य भारतीय नृत्य कलाओं पर 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्हें गुजरात संगीत नाटक अकादमी ने गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया।
Birthday of Alan Parsons. Born in London, England, he started his music career as an assistant engineer at Abbey Studios, Road Studios, where he engineered Paul McCartney's Wildlife, Beatles' Let It Be and Abbey Road, and enjoyed his stint with Pink Floyd's mega classic, The Dark Side of the Moon. This audio engineer turned musician enjoyed singing and playing for his own outfit. Here's one big time hit of his, Eye in the Sky.
आज मूर्तिकार और चित्रकार धनराज भगत की जयंती है। उन्होंने पत्थर, कास्ट, सीमेंट, लकड़ी आदि का प्रयोग करते हुए अपने शिल्प बनाए। धनराज भगत का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कॉस्मिक मैन सीमेंट और प्लास्टर से बनाया गया है और वर्तमान में ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। उन्हें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
राइट आकर्षिता, टाइम टू वाइंड अप.
जी जी हाँ, और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की. नमस्कार,
नमस्कार.